पृष्ठ संख्या 18। भास के नाटक। भास के 13 नाटक प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर पुसालकर ने शैली, संवाद आदि के आधार पर कृतियों को अधोलिखित क्रम में प्रस्तुत किया है। पहला दूतवाक्य, दूसरा कर्णभार, तीसरा दूत घटोत्कच, चौथा उरुभंग, पांचवा मध्यम व्यायोग, छठा पंचरात्र, सातवां अभिषेक, आठवां बालचरित, नौवां अविमारक, दशवां प्रतिमा, ग्यारहवां प्रतिज्ञा यौगंधरायण, बारहवां स्वप्नवासो दत्तम और तेरहवां चारुदत्त। विषय शैली एवं निरूपण पद्धति के आधार पर भास की रचनाओं का अय्यर ने इस प्रकार क्रम निर्धारण किया है। पहला दूत घटोत्कच, दूसरा कर्णभार, तीसरा मध्यम व्यायोग, चौथा उरुभंग, पांचवा दूतवाक्य, छठा पंचरात्र, सातवां बालचरित, आठवां अभिषेक, नौवां प्रतिज्ञा यौगंधरायण, दसवां अभिमारक, ग्यारहवां प्रतिमान नाटक, बारहवां स्वप्नवासो दत्तम तथा तेरहवां चारुदत्त। दूत घटोत्कच, यह नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है। कथानक को लेकर अपनी प्रतिभा प्रसूत घटनाओं का मिश्रण कर इसे रोचक रूप में उपस्थित किया गया है। हिडम्बा पुत्र घटोत्कच कृष्ण का दूत बनकर कौरव सभा में आता है। दौत्य प्रधान होने से इसका दूत घटोत्कच नाम दिया गया है। इसका कथानक कवि कल्पना प्रसूत है। घटोत्कच का कृष्ण दूत रूप में आना महाभारत में उपलब्ध नहीं है। इसकी प्रधानता के आधार पर इसका यह नाम दिया गया है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद दूत घटोत्कच धृतराष्ट्र के सम्मुख उपस्थित होता है और युद्ध का भयंकर फल सूचित करता है। दुर्योधन व्यंग्य करता है कि घटोत्कच भी वैसा ही उत्तर देता है। दोनों अशांत हो जाते हैं। घटोत्कच युद्ध के लिए ललकारता है। धृतराष्ट्र किसी प्रकार उसे शांत करते हैं। अभिमन्यु का बदला अर्जुन लेगा। इस सूचना के साथ घटोत्कच चला जाता है। कर्णभार। महाभारत के आधार पर इस रूपक की रचना हुई है। पृष्ठ संख्या 19। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण का यह नियम था कि वह मध्याह्न में जल के मध्य खड़ा होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान देता था। इस अवसर पर उसके लिए अदेय कुछ भी नहीं था। इंद्र ने इसी अवसर पर ब्राह्मण रूप में उपस्थित होकर भिक्षा के रूप में कवच की याचना की। कविवर भास ने इस कथा को अपनी कल्पना से रूपक के अनुरूप संकलित किया है। वह जल में उपस्थित नहीं वरन रथ पर आरूढ़ अर्जुन के साथ युद्ध के लिए तत्पर हो अर्जुन के सम्मुख रथ ले जाने के लिए आदेश देता है। शल्य और अपने वार्तालाप के प्रसंग में कर्ण अपने शाप के विषय की सूचना देता है। शल्य को दुखी देखकर कर्ण युद्ध के गुणों का वर्णन करता है और यह कहता है कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग और विजयी होने पर यश की और राज्य की प्राप्ति होती है। महाभारत की कथा में कर्ण स्वयं इंद्र से शक्ति की याचना करता है, किंतु भास का कर्ण उच्च भूमिका पर प्रतिष्ठित है, अतः वह स्वयं प्रतिदान की इच्छा व्यक्त नहीं करता। देवदूत ब्राह्मण के वचन का पालन करने के लिए शक्ति को ग्रहण करने के लिए कहता है और कर्ण इस अनुरोध को ठुकरा नहीं पाता। आश्चर्यजनक घटना है कि विप्रवेशधारी इंद्र प्राकृत भाषा का प्रयोग करता है। डॉक्टर भट्ट के अनुसार महाकवि भास ने कर्ण की कथा में नवीन कल्पना प्रसूत विषयों का सन्निवेश कर कर्ण का स्वरूप प्रदर्शित किया है। इसका अंगीकृत रस करुण है। मध्यम व्यायोग, इस नाटक की रचना कुंती के मध्यम पुत्र भीम को आधृत पर एकांकी रूप में की गई है। इस कथा वस्तु का मूल स्रोत महाभारत प्रथम अध्याय के 151 से 155 सर्ग में है। महाकवि भास ने महाभारत की कथा को विशिष्ट प्रभावपूर्ण शैली में निबद्ध कर अतिशय मनोहर बना दिया है। घटोत्कच का अपने अज्ञात पिता से युद्ध और हिडिंबा सम्मेलन कवि कल्पना प्रसूत है। भीम और घटोत्कच के चरित्र को व्यक्त करते हुए ब्राह्मण परिवार को मध्यम चुना तथा ऐतरेय ब्राह्मण के प्रभाव से मध्यम को समर्पित करने की दृष्टि प्राप्त की। घटना प्रधान इस नाटक में कवि की प्रतिभा कथा वस्तु के संयोजन से रस प्रवाह में सक्षम है। पृष्ठ संख्या 20। भास ने घटोत्कच और हिडिंबा में मानव स्वभाव का समावेश किया है। इस नाटक के पढ़ने से भीम से मिलन के लिए यह षड्यंत्र किया है। महाभारत में इतस्ततः विकीर्ण कथाओं को एक माला का रूप ही नहीं दिया, वरन अति हृदयावर्जक रूप दिया है। ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को लेकर घटोत्कच माता हिडिंबा के पास जाता है। पानी पीने गए हुए मध्यम को वह बुलाता है और मध्यक पुत्र भीम उपस्थित होता है और युद्ध के बाद हिडिंबा के सम्मुख जाते ही वह पहचान लेती है। भीम की उदारता आत्मसमर्पण की भावना के प्रदर्शन में कवि ने अपनी कुशल काव्य प्रतिभा का अपूर्व सन्निवेश किया है, जिससे दृष्टा सर्वथा एकतान हृदय से आनंद की अनुभूति करता है, जो कुशल शिल्पी ने ही प्रस्तर को काट छांट कर अपूर्व लावण्य की अभिव्यक्ति की है।